बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये किताब दज्जाल 3, जिसके मुसन्निफ़ हैं मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर, आपकी खिदमत में करतबा ऑडियो लाइब्रेरी के तआवुन से पेश की जा रही है। मज़ीद किताब की मालूमात या रिकॉर्डिंग्स के लिए रब्ता करें हमारे नंबर 0621-213-8125 पर, या विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.kartaba.org पर, www.kartaba.org पर। अब हम सुनेंगे इस बुक का पार्ट 13। क्या होगा, वो किस किस्म के तशद्दुद का शिकार हुए होंगे, लेकिन वो ये सोचकर सब्र कर लेते हैं कि कम अज कम इस मुसीबत से जिंदा निकल आए। जब से इंतकासा का आगाज हुआ, यानी दिसंबर 1987 में, PHIRC की रिपोर्ट के मुताबिक 25 फिलिस्तीनी इसराइली कैद के दौरान शहीद हो गए। कुछ को गोली मार दी गई। पास तिब्बी सहूलतों की अदम फरहमी की बाइस ऐसे जिस्मानी पेचीदगियों मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो गए कि वो शहीद हो गए, जिसकी वजह पिटाई और टॉर्चर थी। EHIRC के मुताबिक दिसंबर 1987 से मार्च 1992 के दरमियान 1030 फलस्तीनी इसराइली फायरिंग, तशद्दुद और टेयर गैस के इस्तेमाल किए जाने से जान की बाजी हार गए। इस खुले आम थोक के हिसाब से मुजिब खाने जैसी कार्रवाइयों का ये जवाब पेश किया जाता है कि इसराइली अपना दिफा कर रहे हैं और फलस्तीनियों के हमले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वजह को तस्लीम कर भी लिया जाए तो इसी अरसे के दौरान 100 से भी कम इसराइली हलाक हुए। फलस्तीनी सियासी कैदियों पर तशद्दुद। इसराइली इंतजामिया की कार्रवाइयों की बहुत ज्यादा तफसीलात कई मुसन्निफों ने बयान की। मारियन वेलफ्रॉन, जो कि स्कॉटलैंड से यहूदी सहाफी है, इसने अभी एक किताब बेसमन शेका पेट्रियट ऑफ अ फलस्तीन लिखी, जिसमें इन अजियतों की तफसील दी गई जो फलस्तीनियों ने इसराइलियों के हाथों झेली। मिसाल के तौर पर सबसे आम तरीका ये इस्तेमाल किया जाता है कि बिजली के तारों और शीशे के टुकड़ों को नीचे डाल दिया जाता है, खास तौर से इन फलस्तीनियों पर जो कि हमलों के शकूक में गिरफ्तार हुए। इसकी तस्दीक इसराइली अखबार यादोस एक्रियंस ने इस वक्त की जब एक आर्टिकल में एक पुलिस अफसर ने इस बात का इकरार किया। फलिया लेंगर, जो कि एक इसराइली वकील है, इसने भी इस बात का इंकशाफ अपनी एक किताब With My Own Eyes में किया, जिसने फलस्तीनियों पर होने वाले तशद्दुद का खुलकर तफसील से बयान की, जो कि उसने एक वकील की हैसियत से इसराइली इंसाफ के निजाम को देखा। इसके अलावा वलीद खलील की तहरीरों में भी इसका जिक्र तफसीलन मौजूद है। इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां 1972 से 17,000 से ज्यादा वकील, डॉक्टर्स और असातिज़ा को डिपोर्ट किया जा चुका था, वो भी बहुत सी मामूली बातों पर वो अपने दिफा का मौका दिए बगैर। इसके अलावा पिछली दो रिहाइयों में मजीद हजारों फलस्तीनियों को, तालीम याफ्ता अफराद और हुनरमंद अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका है। 1948 की जंग आज़ादी के बाद, जिसको अरब एक सानहा के तौर पर याद करते हैं, जिसकी वजह से लाखों फलस्तीनियों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, इसराइलियों ने इनके घरों पर कब्जा कर लिया और लॉ ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एब्सेंट प्रॉपर्टी के तहत कोई भी फलस्तीनी जो कि 1947 से 1950 की रिहाई में कभी भी बाहर गया हो, इसको ये मिल्कियत किसी भी सूरत वापस नहीं मिल सकती। ना ही वो इसमें आबाद हो सकते हैं, ना ही इन ज़मीनों पर किराया ले सकते हैं, ना ही इसमें काश्तकारी कर सकते हैं। 385 से ज़्यादा फ़लस्तीनी गांव बिलखसूस یلی بی کے علاقے میں شمالی اسرائیل، خاص طور پہ لبنان اور شام سے ملحقہ سرسبز و شاداب علاقہ مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ یہ فلسطینی گاؤں بلڈوزرز کے ذریعے تباہ کیے گئے تاکہ صہیونی نئی اسرائیلی بستیاں بنا سکیں۔ ولفسن پیٹریوٹ آف اے فلسطین، پیج نمبر 1718۔ اسرائیلی حکومت کا غیر اعلانیہ نصب العین یہی ہے کہ فلسطینی ثقافت کی 2000 سال سے زائد پرانی تاریخ کو مسخ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے تحت اسرائیل بڑے پیمانے پر دنیا بھر سے، خاص طور پر روسی یہودیوں کو درآمد کر رہا ہے۔ انہیں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آباد کیا جا رہا ہے تاکہ ان علاقوں میں اپنی عددی برتری قائم کی جا سکے۔ فلسطینیوں کو سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ فلسطین کے جھنڈے نہ لہرائیں جو کہ انہوں نے اپنی قوم کی نمائندگی کے لیے چنا ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان سے سخت تفتیش کی جاتی ہے، گھر بلڈوزر کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ گولیوں سے بھی مار دیا جاتا ہے۔ شہری حقوق کے خلاف ورزی، اس سے زیادہ تشویشناک صورتحال اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کی یہ ہے کہ اسرائیلی فلسطینیوں کے اپنے زمین پر رہنے کے حق کو بری طرح پامال کر دیا گیا ہے، خاص طور پر مشرقی یروشلم میں۔ تو یہ ایک عام سی بات بن گئی ہے، مشرقی یروشلم میں کسی بھی فلسطینی کو بڑی مشکل سے عمارت کی تعمیر کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ صہیونی آبادیوں جن کے رہائشیوں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، یروشلم کے شہری علاقوں کے چاروں طرف پھوٹ پڑی ہیں، جس سے ان فلسطینی گاؤں کی آبادیاں گھٹ کر رہ گئی ہیں جو اس کے آس پاس ہیں۔ اسی طرح مغربی کنارے میں زمینیں مستقل بنیادوں پر ضبط کر لی جاتی ہیں تاکہ نئی سڑکیں بنائی جا سکیں، جو کہ کمبوستیم دیگر اسرائیلی آبادیوں کو ملا سکے۔ یروشلم میں تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی جس جگہ کے متعلق حساس سیکیورٹی زون کا اعلان کر دیں، کسی بھی گھر پہ وہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک علاقہ یروشلم کے مسلم حصے میں اول وارڈ ہے۔ اس علاقے سے گزرنے والی سڑک دیوارے گریا سے جا ملتی ہے۔ تراہی خاندان مثال کے طور پر اس علاقے میں پچھلے 300 سال سے ایک بڑے گھر کا مالک تھا، لیکن 1969 میں اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اس گھر کو خالی کر دے، کیونکہ اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اسے یہ علاقہ حفاظتی مقاصد کے لیے چاہیے۔ بعد میں اسرائیلیوں نے یہ گھر بھی اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا اور اس گھر کو سیل کر دیا۔ 1992 میں ایک عسکری آبادی ایٹریٹ کونیما کے غنڈوں نے اس گھر پر قبضہ کر لیا۔ تراہی خاندان نے اس کی شکایت کی، لیکن اس طرح کے مقدمات کا جو حشر ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ ایک شخص جس کا نام نافے ہے، جو کہ ایک گفٹ شاپ کا مالک ہے، بالکل تراہی خاندان کے گھر کے سامنے اس نے اپنا علاقہ یہودی مذہبی تنظیم کو دینے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے کئی بار اس کی دکان میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ میری ملاقات چند روز پہلے اس یہودی سے ہوئی جس پر غنڈوں نے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پسلیوں پر زخم آ گئے تھے اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایٹریوٹ نے پرانے شہر کے بالکل وسط کے علاقے میں واقع کئی بڑے گھروں پر قبضہ کر لیا جو کئی نسلوں سے عرب خاندانوں کے پاس تھے۔ جب یہودیوں میں ایک دن یہ افواہ پھیلائی گئی کہ ایک اسرائیلی پر پرانے شہر میں حملہ کیا گیا ہے، تو ان یہودی غنڈوں نے جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے بلوا کیا اور بلا امتیاز فائرنگ شروع کر دی۔ جبکہ ایک عورت جس کا نام اماہا نشیم ہے، اس کا گھر جلانا شروع کر دیا۔ میری جب اس عورت سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ ان یہودیوں نے قریبی علاقے میں موجود گھروں پر بھی فائرنگ کی اور وہ اس سے پہلے سے منصوبہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ سب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وہ سنگین صورتحال ہے جس نے فلسطین کو ایسا آتش کدہ بنا دیا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اس نے سارا قصور مذہب اور با اختیار دنیا کا ہے جو سب کچھ اپنے ناک تلے برداشت کر رہی ہے۔ حصہ سویم، اسرائیل سے فرار، وطن واپسی کی تیاری۔ جب میں نے اپنے وطن کینیڈا کی واپسی کی تیاری شروع کی تو میں نے
जज्बात पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया कि किस तरह से ये सारा मवाद, रिसर्च और नोट्स वगैरह इसराइल से बाहर ले जाऊंगा, इस पर किसी की नजर ना पड़ सके। मुझे ये बात बताई जा चुकी थी कि इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर चेकिंग इंतहाई सख्त है, और ये कि वो मेरे सामान की मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। इसके बरक्स में इंतहाई आसानी से इसराइल में दाखिल हुआ था। मुझे ये बताया गया था कि अगर मैं बम या कोई छुपा हुआ हथियार लेकर इसराइल में दाखिल नहीं हो रहा तो परेशानी की कोई बात नहीं। इसके अलावा मुझे इस बात की भी फिक्र हो रही थी कि मैंने इतना मवाद इकट्ठा कर लिया था कि इसको ज़ाया करना खुद एक नाकाबिल तलाफी नुकसान बन जाता। इसलिए मैंने फैसला किया कि अपने नोट्स को जिस हद तक भी हो सके खतूत की शक्ल में या एक सयाह की डायरी की शक्ल में सफरनामे में छुपा लिया जाए। मैं अपने फ्लाइट से तकरीबन 2 घंटे कब हवाई अड्डे पे पहुंचा। इस वक्त यहाँ पर ज्यादा रश नहीं था। 1 घंटे के बाद एक नौजवान औरत जो कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में काम कर रही थी मेरे पास आई और अपने साथ चलने की दरख्वास्त। इतने नर्म और मुअद्दब तरीके से मुझे अपना सामान मेज पर रखने को कहा ताकि वह इसका मुआयना कर सके। गौर से तलाशी लेने के बाद इसने मुझसे कुछ ज़ाती सवालात पूछे। सबसे पहले इसने मुझसे पूछा मैं इसराइल में क्या कर रहा था। मैंने जवाब दिया मैंने खास तौर पे छुट्टी ली थी, मैं मुकद्दस मुकामात की सैर करना चाहता था। इसने पूछा क्या मेरी मुलाकात इसराइलियों से हुई। मैंने जवाब दिया हाँ मेरी मुलाकात बहुत से इसराइलियों से हुई, लेकिन मेरी किसी एक के साथ बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई। इसने पूछा क्या मेरी मुलाकात किसी फलस्तीनी से हुई। मैंने कहा हाँ थोड़ी बहुत अलकुदस के पुराने हिस्से में हुई थी। इसने फिर मुझसे पूछा क्या आप मगरबी किनारे दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर वाक़ फ़लस्तीनी मकबूजा इलाके गए थे। मैंने बेतकल्लुफी से कहा हाँ बस मुकामात मुकद्दसा की सैर के दौरान वहाँ से गुजरा था। इसके बाद इसने मुझसे वो सवाल पूछ लिया जिसने मेरे लिए मुश्किल पैदा कर दी, सख्त परेशानी का सबब बना। इसने पूछा क्या इन फलस्तीनियों ने आपको कुछ दिया। मैं वैसे ही हर सवाल के बाद मजीद घबराहट का शिकार हो रहा था। पहले तो मैंने सोचा अगर मैं अपने मगरबी किनारे के दौरे का जिक्र करता हूँ तो इससे शकूक व शुबहात पैदा होंगे, लेकिन इसके साथ ही मुझे ये मालूम था कि वो औरत मेरे बैग की तलाशी ले रही है। इसमें बहुत सी ऐसी दस्तावेजात थी जो कि मैंने इंसानी हकूक की तंजीमों से इकट्ठी की थी जिनके साथ मैंने रबते में था। अगरचे मैंने अक्सर दस्तावेजात को अच्छी तरह से छुपा दिया था लेकिन मुझे मालूम था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर पकड़ी जाएंगी। इसलिए मैंने इन दोनों तरह के खौफ को मद्देनजर रख के एक दरमियाना सा जवाब दिया। मैंने कहा मुझे चंद सियासी पंफलेट एक फलस्तीनी शहरी ने दिए थे जिससे मेरी मुलाकात टैक्सी में हुई थी। इस औरत ने इस पंफलेट को देखा, इस पर नज़र दौड़ाने के बाद इसने अपने आला अहदेदार के हवाले कर दिया और यहीं से मेरे लिए मुश्किलात का आगाज हो गया। इस वक्त मैं चकराना शुरू हो गया। मुझे दो मुसल्ला सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने पूछगछ के लिए एयरपोर्ट के टर्मिनल के पीछे ले गए। कमरे में मौजूद 3 अफसरों ने मुझसे बगैर मारे पीटे जारहाना अंदाज में तफ्तीश शुरू कर दी। अल्फाज सख्त इस्तेमाल किए वो मुझसे पूछने लगे ये पंपलेट्स मुझे किसने दिए हैं। मैंने कहा इसका नाम सईद या सयाम था, मैं इसका पूरा नाम नहीं जानता क्योंकि मेरी मुलाकात इससे 1 बार या 2 बार हुई थी, ना ही इसका कोई पता मुझे मालूम है। इस पर उन्होंने मुझसे पूछा मैंने जमीन जब्त करने के मुतालिक, घरों को सील करने के मुतालिक और गजा में नाकाबंदी के मुतालिक दस्तावेजात और मवाद क्यों जमा कर रखे हैं। मैंने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए अदाकारी शुरू कर दी और कहा इसलिए कि मैं इसराइली रियासत का बहुत हामी हूँ और अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह फलस्तीनी मालूमात को तोड़ फोड़ कर पेश करते हैं, बिलखसूस मगरबी किनारे के मुतालिक। ये सब के बावजूद इसराइली मुतमईन नहीं हुए और मुझसे पूछने लगे मेरी मुलाकात और किस शख्स से हुई। मैंने जवाब दिया मेरी मुलाकात और अरबों से नहीं हुई, लेकिन एक अरब साहब ने मुझे चंद और कागजात दिए थे। जब इन लोगों ने मेरे बस्ते की मजीद तलाशी ली तो इन्हें फलस्तीनी इंसानी हकूक की तंजीम PHRIC के मजीद सफात मिली जिसमें इंतकासा کے دوران فلسطینیوں کی اموات کا ذکر تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اس طرح کے مواد کی وجہ سے تمہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف میں اس فکر میں پڑ گیا کہ میں کس طرح سے ان لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ مواد جعلی ہے، جبکہ پی ایچ آر آئی سی کی اصل رپورٹ کی ایمنسٹی انٹرنیشنل اور امریکی کمیشن برائے ممالک یو ایس کنٹری کمیشن نے تصدیق کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اس فلسطینی صحافی کے بارے میں بہت پوچھا، اس کا چہرہ، اس کا حلیہ کس طرح کا تھا وغیرہ۔ میں نے ان لوگوں کو ایک فرضی سا حلیہ بتا دیا اور فوراً یہ بحث چھیڑ دی کہ ایسی رپورٹیں یہودی مخالف دماغوں کی پیداوار ہیں۔ اس وقت تک وہ لوگ میرے سامان کی 3 مرتبہ تلاشی لے چکے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں پی ایل او یاسر عرفات کی تنظیم کا ایک ہمدرد یا پھر پی ایل او کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اس وقت ایک اسرائیلی جو میری تفتیش کی نگرانی کر رہا تھا مجھ پہ دباؤ ڈال رہا تھا کہ جن فلسطینیوں کو میں نے دیکھا ان کا حلیہ بتاؤں۔ دوسری طرف ایک افسر ایک موٹا سا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لیے میز پر ہلکے ہلکے مار رہا تھا۔ اس کا ساتھی مجھ سے پوچھ رہا تھا، تمہیں معلوم ہے پی ایل او کے حامیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں نے جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس وقت جس افسر کے ہاتھ پہ ڈنڈا تھا اس نے ڈنڈے کو اپنی گردن پر علامت رکھا اور اشارہ کیا کہ انہیں اس طرح مارا جاتا ہے۔ چیف سیکیورٹی افسر نے کہا، پی ایل او کے حامیوں کو کئی مہینوں اور سالوں تک قید رکھا جاتا ہے اور اسرائیلی جیلوں کے افسر ان کے اس دورانیے کو انتہائی تکلیف دہ بنا دیتے ہیں، اس لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ میں سرے سے پی ایل او کا حامی نہیں تھا، اور یہ کہ میرا یہ سراسر ایک جھوٹا الزام تھا، اس کے باوجود میں دہشت کا شکار ہو گیا۔ سب سے زیادہ خوفناک میرے لیے وہ وقت ثابت ہوا جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا، کیا میں اپنے اسرائیل میں قیام کے دوران میں نے کوئی ڈائری لکھی؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ بڑی آسانی سے میرے دستی بیگ سے ڈائری نکال سکتے ہیں، اس لیے میں نے فوراً اقرار کر لیا۔ دراصل میری ڈائری میں تمام انٹرویوز اور نوٹس چھپائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے جیلوں کے بارے میں بھی رپورٹس اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات بھی لکھے۔ اگر ان کو دستاویزات اور رپورٹیں مل جاتی تو مجھے ضرور کسی تفتیشی مرکز لے جاتے اور مجھے کافی عرصے تک قید رکھا جاتا۔ اب میری تفتیش 4 گھنٹوں کی ہو چکی تھی، فلائٹ کو چھوٹے ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ڈائری نکالی، میں نے وہ صفحہ کھول دیا جس میں میں نے چند خطوط لکھے تھے جو میں بھیج نہیں سکا تھا۔ اس میں زیادہ تر مقام مقدسہ کی عمارتوں، ان کی آرکیٹیکچرز کا ذکر تھا جن کو میں نے دیکھا، اور ان مقامات کا تفصیلاً ذکر کیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی افسر نے کل 10 صفحات کا مطالعہ کیا، جبکہ میں نے پوری کوشش کی کہ اپنی شکل کم سے کم مطمئن رکھ سکوں اور گھبراہٹ کی کوئی علامت سامنے نہ آنے دوں، لیکن میری حالت تقریباً نیم بے ہوشی کی تھی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے کس طرح سے اذیت دی جائے گی اور کس طرح سے مار کٹائی کی جائے گی، یا پھر بجلی کے جھٹکے دیے جائیں گے یا بھوکا رکھا جائے گا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے سب کا سانس لیا، کیونکہ ایک اسرائیلی آفیسر نے میری ڈائری پڑھنا چھوڑ دی اور مجھے واپس کر دی۔ اگر وہ ایک صفحہ بھی آگے پلٹ لیتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ اسے وہ سارے نوٹس مل جاتے جو میں نے اس لیے لیے تھے، جس کی بنیاد پر میں نے اس آرٹیکل کے آخری حصے کو لکھا۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں پکڑا جاتا تو آج یہ ہوتا بھی یا نہیں۔ مزید 3 گھنٹوں کی سخت تلاشی کے بعد مجھے بتایا گیا کہ میں جا سکتا ہوں، اگرچہ بہت سی دستاویزات اسرائیلی آفیسرز کو دینی پڑی جو انہوں نے ڈھونڈ نکالی تھی۔ خوش قسمتی سے میں نے ان سب کو پہلے ہی ڈز میں رکھ لیا تھا، پہلے ہی کوڈز میں رکھ لیا تھا، کیونکہ مجھے ایسی صورتحال کا اندازہ تھا۔ ایئرپورٹ کے تفتیشی مرکز سے نکلا تو اس وقت تک 8 گھنٹے گزر چکے تھے اور میں تھکن سے چور چور تھا، لیکن پھر بھی میں مطمئن تھا۔ ایک آفریت سے تو جان چھوٹی، اسرائیلی ایئرپورٹ سے اسرائیلی ایئر لائن EL نے مجھے پیشکش کی تھی کہ میں تل ابیب کے شرٹن ہوٹل میں آرام کر سکوں تاکہ اگلے روز کی فلائٹ کے ذریعے لندن جا سکوں، لیکن پھر مجھے دوبارہ سے اسرائیلی سیکیورٹی سے گزرنا پڑتا، جس کا خطرہ میں دوبارہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے لندن کی اگلی فلائٹ پکڑی اور کینیڈا پہنچنے پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ آخری جنگ، जैसे ही हवाई जहाज ने इसराइल के बिन गोरान के बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे से परवाज की, मैं अपने इसराइल के दौरे के बारे में सोचने लगा। यकदम से एल्बर्ट पाइक की पेश गोई मेरे सामने शीशे की तरह शफाफ तरीके से दिखाई देने लगी। इस फ्री मेसन लीडर ने हैरत कुन वजाहत के साथ पहली जंग अजीम की पेश गोई की थी। इसके बाद एक रूसी कम्युनिस्ट रियासत के क्याम की मजीद तफसीलात बताई थी। इसने दूसरी जंग अजीम की भी पेश गोई की थी जो कि जर्मन कौम परस्तों और सहवानियों के दरमियान पेश आई। इसके बाद इसराइल के क्याम का ऐलान किया। पाइक ने यह भी कहा था कि तीसरी आलमी जंग इसराइल और अरबों के दरमियान पेश आएगी, जबकि इसके बाद दुनिया को मुकम्मल तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा, आलमी निज़ाम टूट फूट का शिकार होगा। जिस तरह इसराइली मकबूजा इलाकों में दोबारा आबाद होते चले जा रहे हैं और इन अरबों को जो वहां के आबाई थे इनको धकेलते चले जा रहे हैं, जिनमें इन सहवानी जालिमों के खिलाफ नफरत बढ़ती ही चली जा रही है, तो इससे ये साफ नजर आ रहा है कि बाकी दुनिया भी इस कोशिश में लगी जाएगी और इसमें शामिल होती जाएगी, हत्ता कि एल्बर्ट पाइक की तीसरी पेशगोई भी पूरी होगी। सलेबी जंगों के वक्त से लेकर अब तक तारीख इस बात की शाहिद है कि जिस कौम ने भी अरब दुनिया पर हमला किया वो बिलाखिर भाग गई। इससे कोई शक नहीं कि फलस्तीनी और अरब कभी भी सहवानी रियासत को दिल से तकसीम नहीं करेंगे। वाकई इस मसले का दायमी और फैसला कुन हल मेज की बजाय मैदान में नजर आता है, जो कि तमाम फरीकैन के लिए काबिले कबूल होगा। जौहरी हथियारों की तैयारी के बाद तो आखिरी जंग जो कि तमाम जंगों का खात्मा कर देगी की अलामत तो पहले ही सामने आ रही है, जिसके बाद तमाम माशरती अकदार और इदारे जिस तरह हम जानते हैं खत्म हो जाएंगे और सारा मैदान अगले मरहले के लिए हमवार हो जाएगा। मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, मुस्तकबिल करीब में क्या होने वाला है? क्या हम सब शिकस्त का लिबादा ओढ़ लेंगे? क्या हम सहवानियों के सामने हथियार डाल देंगे? आज जहानी डॉक्टर कैरोल इगली का तो ये ख्याल था कि अमेरिका और दुनिया को अब इन साजिशों के शिकंदे से बचाना नामुमकिन है। अगर 1966 से कबल भी कोई तहरीक चलाई जाती तो इसे भी नाकामी का सामना करना पड़ता। तो क्या इसका मतलब ये है कि गुलामी हमारा मुकद्दर बन गई है? नहीं, हरगिज नहीं। अभी सब कुछ नहीं बिगड़ा, आखिर में साजिशी अनासर नहीं जीतेंगे, ये साजिश बिलाकर तबाह बर्बाद होकर रहेगी। लेकिन अफसोस कि अमरीकी आवाम को इसकी खबर नहीं। साजिश को मुस्लिम मुजाहिदीन हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की क़यादत में तकवा और जिहाद की बदौलत खत्म कर देंगी। शाह मंसूर, चूंकि इस साजिश की बुनियाद लालच गुरूर और बुराई पर मबनी है, इसलिए शैतान के इस मंसूबे में बड़ी खामी है और साजिश और मंसूबा तमाम रूहानी कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है जो कि खुद खुदा ने बनाया है। इसी वजह से ये साजिश जरूर बर्बाद होगी। सहवानियत समझती है कि शायद मुस्तकबिल में इसी साजिश के पास ताकत और कुव्वत होगी, लेकिन ये बहस इसका धोखा है। इस निज़ाम में हर जगह दरारें पड़ चुकी हैं और ये निज़ाम खुद भी हिल कर रह चुके हैं और खुद ही टूट जाएंगे। अखलाकी और रूहानी इकदार न होने की वजह से ये निज़ाम इंसानी फितरत की कमजोरियों से भरा पड़ा है, बिलाखिर इंतशार और बदउनवानी ही पैदा करेगा। ये निज़ाम सिर्फ इस वजह से यकजा है कि इसके मकसद के लिए नफरत, खौफ, दहशत, हेरा फेरी, जबरदस्ती, धमकियां और दबाव डाला जा रहा है। इस सब के बगैर इस निज़ाम के तमाम अज्जा और इस साजिशी अनासर का पूरा तैयार करदा निज़ाम एकदम बैठ जाएगा। जिस तरह हम 21वीं सदी के आखिर की तरफ गामजन है, हमें क्या करना चाहिए कि अमरीका वापस अपने तवाजुन की तरफ लौट जाए और तरक्की और अमन आ सके। एक और इनकलाब की जरूरत है। अमरीकी आवाम के दिलो दिमाग को एक रूहानी इनकलाब की अशद जरूरत है। मगरबी मुफक्किरीन इस्लाम के दाइयों जैसी बातें कह रहे हैं, अफसोस के वो रूह और रूहानियत का हकीकी मफहूम समझ रहे होते। राकिम, यही रूहानी बेदारी अमरीका को सहवानी शिकंजे से आजाद करा सकती है। क्या ऐसा मौजूदा इस वक्त मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अमरीकी जर्नल मिक ऑथर ने कहा, तारीख में एक भी ऐसी मिसाल मौजूद नहीं कि कोई कौम अखलाकी पस्ती के बाद सियासी और माशी बहरान का शिकार न हुई हो। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर या तो एक रूहानी इनकलाब बरपा हुआ जिसकी वजह से अखलाकी पस्ती का मुकाबला किया गया और दोबारा तरक्की की राह अपना ली गई, या फिर कौम और भी इस सदा पस्ती की तरफ चली गई जिसका नतीजा बिल आखिर तबाही के सिवा कुछ भी ना था। अगर हमने एक मरतबा फिर कौमी बेदारी को देखना है तो फिर रोस वॉल्टन जैसे कहता है, यह इंफिरादी बेदारी ही से शुरू हो सकता है, या फिर T.S. फिलेटो जैसे कहता है, क्या मैं अपने हाथ कम अज कम सीधे रास्ते की तरफ बढ़ाऊं? हम सबको अपने हाथ सीधे रास्ते की तरफ बढ़ाने चाहिए। अल्लाह करे कि इस मुतदल मिजाज कैनेडियन सहाफी की बात मगरबी दुनिया को समझ में आए और वो अपने हाथ और कदम सीधे रास्ते की तरफ बढ़ाएं, जो कि इंसानियत की निजात का वाहिद और मुतय्यन रास्ता है। आमीन। पर इसरार दज्जाली अलामात। दज्जाली निजाम के हक में जहन हमवार करने के लिए फैलाई गई शैतानी अलामात। क्या आपने कभी सोनी एरिक्सन का मोबाइल ऑन किया है? इसमें आपको क्या नजर आता है? एक सब्ज आंख जो आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होती है, या फिर आग के मुख्तलिफ रंग बदलती हुई चारों तरफ फैलती है और मोबाइल जिंदगी की हरारत पकड़ कर झुरझुरी लेता है और बेदार हो जाता है। ये सब्ज और सुर्ख और जर्द रंग की आतिश आंखें जो खास अंदाज में रंग बदलती फैलती और स्क्रीन पर छा जाती हैं, फिर हयात बख्श कुवत या तवानाई के बम्बे का तासुर पैदा करती हैं, क्या है? क्या आपने कभी गौर किया? क्या आपने कभी सिगरेट के पैकेट देखे होंगे? इनके साइज और डिजाइन मिलते जुलते होते हैं, लेकिन क्या कभी गौर किया कि इनमें एक ऐसे कदर मुश्तरका है जिसकी बज़ाहिर सिगरेट से कोई मुनासिबत नहीं, लेकिन वो सिगरेट के अलावा शराब की बाज़ अक़साम पर भी यकसां तौर पर सख्त नजर आती है, खास तौर पर तम्बाकू और शराब की इन मल्टीनेशनल कंपनीज के ब्रांड्स पर जो अमरीका या बरतानिया से ताल्लुक रखती हैं। इनके ट्रेडमार्क में अजीबोगरीब कदीम जंगली हयात की नकल एक शबी होती है जिसकी आजकल की रोशन ख्याल कंप्यूटराइज दुनिया में कोई अकली तौजीह मुमकिन नहीं, लेकिन रोशनियों की दुनिया के बासी इसे सुबह शाम धुआं निगलने और उगलने से पहले रोजाना 20 मरतबा देखते और अपने जहन पर नक्श करते हैं और बता सकते हैं कि ये कदीम दौर की जंगली हयात की यादगार अजीबोगरीब चीज क्या है। ये तीन मुख्तलिफ जानदारों पर मुश्तमिल शबीह है जिनके बीच में एक नीम इंसानी नीम जन्नाती कस्म का हियोला है। इसको दोनों तरफ से अजीबुल खलकत जानवरों ने पकड़कर सहारा दिया हुआ है। दाएं तरफ का जानवर घोड़े से और बाएं तरफ का जानवर शेर से मिलता जुलता है। बीच में मौजूद मरकजी शबीह के सर पर ताज है और ताज के ऊपर छोटा सा शेर बना हुआ है। कुछ याद आया? आपको ये चीज यकीनन देखी वाली मालूम होगी। हाँ बिल्कुल वैसा शेर जिसे आप हबीब बैंक या बैंक अल हबीब के मोनोग्राम्स पे देखते हैं। इसकी पूरी शबीह की तखलीस और अलामती नुमाइंदगी इसके ताज से की जाती है जो इस नीम इंसानी नीम शैतानी शबीह के सर पर मौजूद है। चिनाचे बहुत सी मसनूआत पर तो ये शबीह मुकम्मल होती है और कुछ पर फकत ये ताज जो इसके मरकज में बुलंद और मखसूस अंदाज में चमकता दिखाई देता है। मसलन पेप्सी के डिस्पोजिबल टिन को गौर से देखिए। इस डब्बे में जहाँ आर्जी इस्तेमाल के बाद टोकरी में फेंकने की अलामत दी गई है, वहाँ ऊपर ताज भी बना हुआ है। सवाल पैदा होता है और वहम और मोरजे या बेजा तजस्सुस के बजाय अक्ल और मंतक की बुनियाद पर पैदा होता है कि कचरे की टोकरी के ऊपर ताज शहाना का क्या काम? आप कभी अमेरिका और यूरोप गए हैं? नहीं गए तो खुदारा नकल मकानी करके वहां जाने की सोच दिल से निकाल दें। वहां अनकरीब ऐसा वक्त आने वाला है कि आप अपने तन के कपड़ों के अलावा कुछ साथ लेकर ना निकल सकेंगे। अगर आप वहां गए या आपने दुनिया के मशहूर शहरों की सियाहत की है तो क्या आपने महसूस किया आज़ाद ख्याल और आज़ादी की आखिरी हदों तक पहुँचने के बावजूद उरियानियत और मादियत परस्ती मजीद बढ़ती जा रही है और बेतहाशा बढ़ती जा रही है? शोहरत और दौलत के हसूल और मनचाहे ख्वाहिशात की तकमील के लिए लोग जायज़ और नाजायज़ की तफरीक तो बुला ही चुके हैं, अब वो जादू टोने और गैर मराई ताकत और मावराए आनत की हसूल की तरफ राग़िब हो रही है। हैरी पॉटर जैसे नावल्स फिल्मों, कार्टून्स और वीडियो गेम्स ने छोटे छोटे बच्चों के जहन में ये रासेख कर दिया है कि दुनिया में जादू टोना, बावराई मखलूकात यानी शैतान और इसके नुमाइंदा आजम दज्जाल, खबीस जन्नात और इनके चेलों की ताकत ही असल ताकत है। इस तरह अल्लाह ताला का बिन देखे इनकार करने वालों की नई नस्ल शैतान के अनदेखे जाल में फंसती जा रही है।